सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
दाओस में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक चल रही है। भारत बहुत ही अहम तरीके से इसमें साझेदारी कर रहा है। भारत के कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री वहां शामिल होने के लिए गए हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में इस साल का विषय है नवाचार करें, प्रेरित करें, एक सतत भविष्य के लिए निवेश करें। इस मसले पर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भारत को आने वाले वर्षों में क्या लाभ मिलने वाला है, किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को इससे लाभ मिलेगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं दिलीप चिनॉय। दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
धन्यवाद हर्ष।
और शुरुआत सबसे पहले इसी सवाल से हम करना चाहते हैं आपसे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है, इस बार का विषय भी हमने बताया, और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आने वाले वर्षों में विश्व आर्थिक मंच हमें हमारी आर्थिक जो गोल्स हैं, जो टारगेट हैं, उनको अचीव करने में मदद करने वाला है।
हर्ष, अगर आप देखें तो इस साल का जो आपने जो थीम बनाया था, और मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में कहना चाहता हूँ उनके लिए, क्योंकि ये इनोवेट इंस्पायर इन्वेस्ट जो है एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, भारत के लिए एक बिल्कुल जो हमारी जो प्राइम मिनिस्ट्री की एक विजन और सोच है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी और हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन करें, ये बिल्कुल इंडिया की जो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल उसे मेल करता है। और जो उन्होंने इनोवेशन की जो बात की थी, जिस पे ज्यादा चर्चा हुई थी इस बैठक में, वो था जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस पे काफी बात हुई थी। दर्शकों को ये उनको पता होना चाहिए कि भारत ने एक काफी बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नेशनल प्रोग्राम बनाया है, और हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है DPI, वो विश्व भर में एक तरीके से माना गया है। साथ में प्रधानमंत्री ने जो एक इंडियन सोलर अलायंस जो शुरू की थी, और वो जो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज और पूरा जो हम एक तरीके से उसको सस्टेनेबल एनर्जी पे जा रहे हैं, वो दूसरा एक विषय था। और तीसरा जो हमारा डिजिटल स्टैक है, जैसे UPI हो, आधार हो, वो बिल्कुल हमारा एक तरीके से जो थीम है इस साल का डेवोस का बिल्कुल अलाइन करता है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या अगर वो देखें तो मेक इन इंडिया और जो PLI स्कीम्स है, और जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर्स जैसे ड्रोन्स पे और स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम देश पे ध्यान दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक तरीके से अलाइन करता है। जो इंस्पायर जो दूसरा स्कीम है, मैंने आपको कहा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो प्राइम मिनिस्टर का मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो बिल्कुल अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसी है। और हाल ही में हमने जो इंडियन नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। इन्वेस्टमेंट का ये काफी एक महत्वपूर्ण होता है, जैसे आपने कहा है, 5 केंद्रीय मंत्री गए थे, 3 चीफ मिनिस्टर्स वहां पे गए थे, तो अलग अलग वहां पे विषय में बातें हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे, जैसे कि प्लेटफॉर्म G20 का हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हो, देश में जो फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको एक तरीके से प्रोजेक्ट करना एक बहुत ही अच्छा हमें एक मौका मिलता है। और साथ ही में जो हमारे स्किलिंग, इस टाइम स्किल मिनिस्टर भी गए थे, तो हमारे स्किलिंग और रीस्किलिंग मिनिस्ट्री है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास PMKBY है, और अगर आप देखें तो विश्वकर्मा स्कीम है, और जो हम इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से बिल्कुल एक ही मैच करता है, तो काफी फायदेमंद होगा। और इंडिया की जो पॉलिसीज है उसके साथ जो इस साल का डेवोस का थीम है, बहुत ही ज्यादा अलाइनमेंट है।
बिल्कुल, और जैसा कि दिलीप आपने बताया कि 3 मुख्यमंत्री भी गए थे, और खास तौर पर चूंकि मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है तो यहाँ महाराष्ट्र राज्य का जिक्र करना चाहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में लगभग 15.70 लाख करोड़ रुपए के 54 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU जिसकी बात आप कर रहे थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। एक राज्य में निवेश होगा तो न सिर्फ राज्य का विकास होगा बल्कि पूरे देश के आर्थिक विकास में इसका असर पड़ेगा और इसकी बड़ी सकारात्मक भूमिका होगी। इसे आप कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो MOUs हुए हैं और जो इन्वेस्टमेंट मोस्टली FDI के माध्यम से आने वाले हैं?
तो आपने जैसे बताया कि ये 54 MOU करीब 15.7 लाख करोड़ के एक तरीके से हुए हैं। इसके जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो आपके जो कहने थोड़ा दोहराना चाहता हूँ, लेकिन ये ग्रोथ है अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर जैसे डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी जो महाराष्ट्र ये कोशिश कर रहा है कि ये सोलर पार्क्स और विंड एनर्जी फार्म्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, और ये जो उनके अंदरूनीय कार्य डिस्ट्रिक्ट है लाइक विदर्भा और मराठवाड़ा में, वहां पे एक तरीके से फोकस है। दूसरा अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उनका सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो पुणे और औरंगाबाद के ऊपर उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। डिफेंस ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस पार्क, वो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी ही अनाउंस की थी और उसके अंतर्गत ये जो डिफेंस पार्क वहां पे बनेंगे, काफी अच्छा उन्होंने जो अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे वहां पे एक तरीके से काफी चर्चा की थी, और वहां पे पूरा जो उनका जो 2022 का जो पॉलिसी था उसके लिए उन्होंने थोड़े से इनपुट्स और सजेशंस दिए थे, शायद आगे जाके वो एक उसमें थोड़े से बदलाव होने की एक काइंड ऑफ हो सकता है, वो आगे जाके देखना है। लेकिन अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है, पीएम गति शक्ति जो लॉजिस्टिक्स और नेटवर्क्स और एफिशिएंट कनेक्टिविटी, वो वहां पे एक तरीके से हुआ है।
बिल्कुल।
तीसरा पूरा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन टू महाराष्ट्र के एक तरीके से जीडीपी में, ये काफी महत्वपूर्ण है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल होने गए और उन्होंने अपनी बातें वहां पर रखी हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश पहले से ही एक तरीके से कहें तो आईटी के सेक्टर में आगे रहा है। इस बार वहां उनका जाना और नई चीजों पर बात करना, जिसे इनोवेटिव आइडियाज हम कह सकते हैं, इस बारे में आंध्र प्रदेश के तौर पर अगर आप देखें जो कि डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ करने की बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं दिलीप?
आंध्र प्रदेश में देखें तो चंद्रबाबू नायडू के लिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नया एक्सपीरियंस तो है नहीं, वो पहले भी गए हुए हैं, लेकिन इस समय वो एक तरीके से चीफ मिनिस्टर री इलेक्ट हुए हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो उन्होंने खास तौर से एक तरीके से ध्यान दिया है वो तीन या चार महत्वपूर्ण एरिया है। पहला जो है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, तो उसको अगर आप नेचुरल फार्मिंग देखें तो ये भारत वर्ष में भी प्रधानमंत्री ने भी एक तरीके से कहा था कि नेचुरल फार्मिंग पे हमें एक फोकस करना चाहिए, और ये उन्होंने जो वहां के जो अलग देशों से लोग आए थे वहां पे डिस्कशन की और चर्चा की नेचुरल फार्मिंग में क्या कर सकते हैं। दूसरा जो उनका एक इम्पोर्टेंट था जो आंध्र प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है कि वहां पे जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे वहां पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आएगा और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो नए कैपिटल बनेगा वहां पे, तो उसमें हम ये ह्यूमन कैपिटल को कैसे बढ़ावा दें और क्या करें, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण था। तीसरा अगर आप देखें तो जैसे ओवरऑल महाराष्ट्र में भी हुआ था, ओवरऑल एनर्जी के संबंध में और सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी के बारे में जो हाइड्रोजन के ऊपर एक तरीके से जो डिस्कशन हुआ था, वो भी एक तरीके से जो इंडिया भारत के जो नेशनल प्रायोरिटीज है, चाहे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो या क्लीन एनर्जी हो, उसके साथ वो बिल्कुल एक टाइम से अलाइन करता है, और आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की बहुत ही इम्पोर्टेंट एवेन्यू और सोर्स है।
बिल्कुल। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक में देखें तो इस बैठक में की गई साझेदारियों और समझौतों का लाभ उठाने की योजना भारत कैसे बना सकता है और बेहतर तरीके से, या कहें कैसे बना रहा है, ताकि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको और बढ़ावा दिया जा सके और देश के भीतर जो आर्थिक असमानताएं हैं उनको और पाटा जा सके, उनको कम किया जा सके।
तो अगर आप देखें तो इस फोरम में जो की इश्यूज थे वो पहला अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले तो इसमें वो जो थीम था, और इंडिया ने ये पूरा इन्वेस्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज में एक सेशन किया था, और उसपे वो जो फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, और ये इंडिया के कमिटमेंट ऑफ इंटीग्रेटिंग AI इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म था। दूसरा जो जैसे मिनिस्टर जयंत चौधरी गए हुए थे तो वहां पे जो डिस्कशंस और जो हुआ था कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल को कैसे ट्रेन करें और जो सस्टेनेबल ग्रोथ है और एक वर्ल्ड के लिए एक स्किल कैपिटल बनना उसके ऊपर डिपेंड हुआ था, और जैसे मैंने पहले किया था सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ही डिस्कशंस हुए थे, और भारत के लिए तीन चार इम्पोर्टेंट आउटकम्स है। एक तो हमने बात की महाराष्ट्र की, लेकिन आप देखें तो चिराग पासवान ने कहा कि ये AB InBev ने करीब $250 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था, महाराष्ट्र के स्टेट इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ था, और काफी अलग अलग कंपनीज ने भी वहां पे एक तरीके से वहां पे जो अपने पार्टनरशिप्स किए थे, तो ये एक सिग्नल जाता है दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज को, इंडिया के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसपे इन्वेस्ट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को ह्यूज बढ़ावा देना बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटकम हुआ है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से।
देखिए, भारत विश्व आर्थिक मंच में एक बेहद सक्रिय भागीदार रहा है और भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के जो इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है, क्या कहेंगे आप?
जैसे मंत्री वैष्णव ने कहा और जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो इंडिया का जो थीम है अगर आप देखें तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो पेरिस क्लाइमेट से बाहर निकल रहे हैं, तो लेकिन भारत की जो पेरिस अग्रीमेंट की जो कमिटमेंट्स है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से वर्ल्ड में ये जो हम इसमें जो भाग लेते हैं ऐसे मीटिंग्स में, खासकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ये इंडिया के लिए और इंडिया के पोजिशनिंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विंडो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट शोकेस है। क्योंकि जो मिनिस्टर्स जाते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स जाते हैं, उनके जो वहां पे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, और जैसे कि अलग अलग सेशंस में इंडियन सीईओज भी बात करते हैं, जैसे नारायण एन चंद्रशेखरन थे, मिस्टर सुनील भारती मित्तल थे, आनंद महिंद्रा थे, तो इससे एक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है कि इंडिया एज अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नॉट ओनली द नेशनल लेवल बट ऑल्सो स्टेट लेवल पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जाता है कि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर और एक ग्लोबल इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज डेवलप हो रही है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की सक्रिय भागीदारी के बावजूद, दिलीप, वैश्विक आर्थिक सहयोग के संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी सामने होती हैं कई बार, क्या है अगर ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जिसे आप देख पा रहे हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब मीटिंग होती है तो उससे पहले वो एक तरीके से आउटकम रिपोर्ट के जो ग्लोबल रिस्क हैं, जो उनकी क्या रिस्क हो सकती है और गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्री की क्या चैलेंजेस हैं, तो उसमें आप देखें तो मैं खाली तीन लेना चाहता हूँ। पहले तो बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, ये इसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, इंडस्ट्रीज को कैसे इम्पैक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, और कंपनीज और कंट्रीज इसको कैसे एक तरीके से अपनाए विदाउट ये कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। दूसरा जो था ये सारा था जो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन, या अभी तो सीज फायर अनाउंस हो इसके दौरान ही गाजा में जो हो रही थी, और अलग अलग जो कई डिफरेंट एरियाज में एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका एक तरीके से वो था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो जो सस्टेनेबिलिटी, और इसमें जो सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी, उसको डीकार्बोनाइजेशन पे कैसे उसको फोकस करें और उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को कैसे इंटीग्रेट करें। और लास्ट में जो कहना चाहता हूँ जो काफी एक था, वो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। अगर आप देखें तो एक तरीके से जो विमेन हो, या जेंडर इनइक्वालिटी हो, या सोशल इनइक्वालिटी हो, या अलग अलग सेक्शंस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते या बिछड़े, उनको एक तरीके से कैसे उनको इंक्लूड किया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में लिया जाए। क्योंकि ट्रंप भी प्रेसिडेंट बने थे तो ट्रेड रिलेशंस और ग्लोबल मार्केट डायनेमिक्स भी एक तरीके से डिस्कस हुआ था।
बिल्कुल दिलीप चुनाव, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपने जो आपका अनुभव रहा है उसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू हर्ष।
अभी आप सुन रहे थे विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चुनाव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में